बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि अभी तक आप सुनते रहते हैं, बीच बीच में कुछ एक्टिविटी होती है, लेकिन अभी आपको बोलने का मौका है, क्योंकि आपको भी तो सुनना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे अभी, और ग्रुप्स बना के सभी को डिवाइड करके बताएंगे कहाँ कहाँ बैठना है। उससे पहले मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स सिस्टर नेहा, सिस्टर रीतु, सिस्टर शिविका, सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर उज्ज्वला घाटकोपर मुंबई। आप पांचों बहनें हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ इन सभी बहनों को। अच्छा, मेरे राइट साइड नेहा बहन है, बचपन से ही आपको ज्ञान का सानिध्य प्राप्त है और मुंबई से आप हैं। वर्तमान समय सांताक्रूज वेस्ट, वहां पर आप सेवा में उपस्थित हैं। आपकी विशेषता है कोई भी कार्य को, जो भी कार्य मिले उसको लीड करके उस कार्य को संपन्न करना। तो आज ये ग्रुप वन की ग्रुप लीडर रहेंगी सिस्टर नेहा। यस, फिर हमारी दूसरी ग्रुप लीडर है सिस्टर रीतु। सिस्टर रीतु, 11 साल से आप इस ज्ञान के संपर्क में हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो कर रही हैं। यू आर ए प्रोफेशनल। 8 सालों से आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्पेशली कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूट्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसमें आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत अच्छा अनुभव है। और उसी एक्सीलेंस के लिए वर्ल्ड एचआरडी कॉन्फ्रेंस की ओर से आपको एशियन लीडरशिप अवार्ड 2017 भी प्राप्त हुआ। तो वो ग्रुप नंबर 2 को लीड करेंगी। तीसरी हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं, ग्रुप लीडर, वो है सिस्टर शिविका। सिस्टर शिविका की विशेषता है, यस, आप देखिए एजुकेशन विंग के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और आप ऐसे एमबीए हैं, दिल्ली से हैं और काफी सालों से इस ज्ञान के संपर्क में हैं, ज्ञान की शिक्षाओं को धारण कर रही हैं। और यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन विंग का ऑफिस है, जिसका बहुत एक्सपेंशन है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज, डिप्लोमास, एमबीए, पीएचडीज, ये सारे कार्यक्रम चलते हैं और अन्य भी जो एजुकेशन विंग के कार्यक्रम हैं, उनको आप अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं। आप एजुकेशन विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं शिविका बहन। हमारी रितु बहन और नेहा बहन, नेहा बहन जो है हमारी शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर है और रितु बहन जो है इसी विंग की जो है मेंबर है। उसके बाद फोर्थ ग्रुप लीडर है सिस्टर ज्योति। ज्योति बहन भोपाल जोन से ही है, ग्वालियर में हमारा रिट्रीट सेंटर है, उसको आप संभालती हैं और बचपन से ही आपको सेवा केंद्र पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ, वहीं पढ़ाई की और करते करते अभी आप सेंटर को संभाल रही हैं और हमारे भोपाल जोन के सेट विंग की आप कोऑर्डिनेटर हैं। आप हैं ज्योति बहन। और पांचवें ग्रुप की ग्रुप लीडर है हमारी उज्ज्वला बहन। उज्ज्वला बहन, यस, आप क्लैपिंग करें। उज्ज्वला बहन जो भटवाड़ी घाटकोपर से हैं और वैसे आप जो हमारा शिपिंग एरिया में सेवाएं हो रही हैं, आपको मालूम है ये सेक्टर जो है तीन एरियाज को फीड करता है, एक है शिपिंग, एक है एविएशन और तीसरा है टूरिज्म। तो जो शिपिंग का एरिया है उसमें इन्होंने काफी सेवा की है, जेएनपीटी में और अन्य जो पोर्ट्स हैं मुंबई में, वहां पर आप बहुत मेहनत करके सेवा करती हैं। मैं समझती हूँ यहाँ भी जेएनपीटी के बहुत, जेएनपीटी के कनेक्टेड या और जो डिफरेंट पोर्ट्स से कनेक्टेड आए हुए हैं भाई बहन, लगभग मेरे हिसाब से 200 से ऊपर हैं जो वहां से आए हुए हैं। तो आपके साथ जो रविंद्र भाई हैं जेएनपीटी में भी कार्यरत हैं, तो आप ये सेवाएं बहुत बखूबी निभा रही हैं और सेट विंग की आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। 25 सालों से आप ज्ञान को फॉलो कर रही हैं। तो आप हैं उज्ज्वला बहन, ये पांच ग्रुप्स हैं। तो हम इन पांचों का ही ग्रुप लीडर्स का बहुत तालियां बजा के वेलकम करते हैं।
स्वर्ग बनाए मिलकर। आओ स्वर्ग बनाए मिलकर, कहती ये दुनिया सारी, कहती ये दुनिया सारी, जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश।
हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश।
अब सबकी यही है आस, अब सबकी यही है आस। स्मृति से बदली दृष्टि वृत्ति, बदली कृति और प्रवृत्ति, दृष्टि बदली फैली अशांति, दूषित हुई है सारी प्रकृति। परिवर्तन कर ले स्मृति को बनेगी दुनिया प्यारी,
परिवर्तन कर ले स्मृति को बनेगी दुनिया प्यारी,
जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश।
हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश।
अब सबकी यही है आस। क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो बादल ने घेरा, खुद को भूले देहभान में आए, बड़ा दुखों का घना अंधेरा। पवित्रता को धारण कर ले तज के दृष्टि विकारी,
पवित्रता को धारण कर ले तज के दृष्टि विकारी,
जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश।
हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश।
अब सबकी यही है आस। सदा ही बरसे खुशियों का सावन, विश्व होगा मन भावन, जल में खुशबू वायु में सा, चांद तारों से सजा आंगन, योग लगा ले प्यारे प्रभु से झूमेगी प्रकृति सारी,
योग लगा ले प्यारे प्रभु से झूमेगी प्रकृति सारी।
आओ स्वर्ग जग बनाए मिलकर, आओ स्वर्ग बनाए मिलकर। कहती ये दुनिया सारी जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश।
हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश।
अब सबकी यही है आस, अब सबकी यही है आस, अब सबकी यही है आस।
आज समय और देश हम सब का आह्वान कर रहा है कि हे मानव, उठो, पॉजिटिविटी के पथ पर चलकर देश की एक नई तस्वीर बनाओ। एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करो जिसमें आपका जीवन सबके लिए प्रेरणादायी हो। देश के नवनिर्माण और भारतीय संस्कृति के उत्थान में हम सबको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और वो कैसे होगी उसी का ऊपर, इसी विषय पर आप सबने अपने विचारों का आदान प्रदान किया ग्रुप्स में, और उसी को प्रेजेंट करने के लिए यहां पर हमारे विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छों से मंचासीन वक्ताओं का स्वागत करें और सम्मान करें, और आप सभी तब तक करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। राजयोगिनी आदरणीय अवदेश दीदी जी, सचमुच क्या आप महसूस करते हैं कि देश का भविष्य हम सबके कंधों पर है? कैसे? क्योंकि हम सब जो एक अविनाशी ऊर्जा है, आत्मा है, तो हम सब की वह ऊर्जा स्वर्णिम भारत के निर्माण के दिशा में लगाने के लिए आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने तो आजादी के समय स्वर्णिम भारत का सपना देखा था, और आज 70 वर्षों के बाद भी वो सपना अधूरा है। तो वो सब हम पूरा करेंगे अपनी ऊर्जा को स्वर्णिम भारत के निर्माण में, और इसलिए हम सब यहां पर जिम्मेवार नागरिक बैठे हैं, और आप सब ने जो विचार किए वो अपने ग्रुप में शेयर किया है। तो ग्रुप में जो आपने डिस्कशन किया उसे हम सब के समक्ष रखने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं मेरी स्नेही बहन ब्रह्मा कुमारी उज्ज्वला बहन। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग की। आपसे अनुरोध है कि जो आपके ग्रुप में स्वर्ण तुल्य विचार सबने शेयर किए वो इस सभा में हम सबके साथ शेयर करें।
ओम शांति। आज का जो टॉपिक है, माय रोल इन मेकिंग गोल्डन भारत, भारत को स्वर्णिम बनाने में मेरा क्या रोल होगा। ग्रुप हमारा बहुत ही अच्छा था, ग्रुप के वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव और क्रिएटिव भी थे, तो बहुत अच्छा डिस्कशन चला। क्योंकि भारत देश स्वयं में ही महान है, तो भारतवासी ऑफ कोर्स महान है ही। इसमें पहला प्रश्न था कि क्या आप मानते हैं कि ऐसा विश्व हो सकता है, तो सभी ने एक साथ यस कहा और फिर हमारी चर्चा आगे चली। तो आगे था कि क्या आपको लगता है कि ऐसा विश्व होगा, भारत स्वर्णिम होगा, तो उसमें क्या होगा। तो जो पॉइंट्स निकली है, सबसे पहले उसमें सुरक्षितता होगी, उसके बाद शारीरिक और मानसिक स्वस्थता होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, सभी लोग कायदे के अनुसार चलेंगे, वहां पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी, तो किसी ने अपना बहुमूल्य विचार शेयर किया कि वहां दहेज प्रथा नहीं होगी, सभी खुशी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहां पर कोई मांगने वाला नहीं होगा, आज की भाषा में भिखारी नहीं होंगे, जो बेसिक नीड्स है वो सबकी पूरी होगी, इसीलिए शांति और प्यार का वातावरण बना रहेगा, वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो सभी को सम्मान मिलेगा एक दूसरे से, पेशेंस और टॉलरेंस ये वैल्यूज होगी, स्पेशली पशु पंछी बड़े प्यार से रहेंगे, जिसको हम कहते हैं शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे, इस प्रकार का सुंदर व विश्व होगा, ऐसी सभी की मान्यता है और सभी का विश्वास है कि ऐसा विश्व जरूर भारत में होगा, जिसे हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। सेकेंड प्रश्न था कि कौन सी वैल्यूज को उस भारत में होगी, जो लोग होंगे उनके पास कौन सी वैल्यूज होगी, तो उनके पास हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, लव, इमोशंस, ट्रुथ सत्यता होगी, दिव्यता होगी, उनके विचारों में शुद्धता होगी, वहां जो राजा होगा वो प्रजापालक होगा, संतुष्टता होगी, दूसरों के लिए सद्भावना होगी, और विशेष तौर पर वहां शुद्ध भोजन होगा, वहां पर किसी प्रकार का व्यसन नहीं होगा, एडिक्शन की बात नहीं होगी। तीसरा सवाल था कि ऐसा विश्व इस धरती पर कौन लाएगा, और सभी ने बड़े दिल से, प्यार से, उमंग से कहा कि हाँ मैं लाऊंगा। तो इसीलिए ग्रुप बड़ा ही अच्छा था, उमंग बढ़ाने वाला था हमारा, तो सभी ने कहा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस विश्व का निर्माण करने में अपना सहयोग दूंगा, और इसी से कनेक्टेड है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन बताया है। तो किसी ने कहा कि अपने प्रोफेशन में सच्चाई ईमानदारी लाएंगे, वो जो भी जिस प्रोफेशन में है उसमें सच्चाई ईमानदारी लाएंगे, नैतिकता की राह पर चलेंगे, प्रामाणिकता, प्यूरिटी, और जो भी सोचते हैं वो पहले स्वयं करेंगे प्रैक्टिकल में, फिर औरों को शेयर करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, सेवा, साधना, समर्पण भाव, स्माइल, साइलेंस और सरकार, ये छह प्लानिंग बताए हैं किसी ने कि मैं इनका अप्लाई करूंगा, और प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए हम रिसर्च करके भारत को प्रदूषण से किसी भी प्रकार के पोल्यूशन फ्री बनाएंगे। तो इस प्रकार से सभी ने अपने विचार रखे। ओम शांति, धन्यवाद।
थैंक यू उज्ज्वला बहन। जितने खूबसूरत वस्त्र हो उतने ही सुंदर विचार हो, जितना आलीशान घर हो उतना ही आलीशान नजरिया हो, जितनी बड़ी कार हो उतना ही मन में उपकार हो। स्वर्णिम संसार को चाहने वाला पहले खुद में स्वर्णिम संसार हो। और आप सब वही स्वर्णिम विचारों वाले हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूं मेरी स्नेही बहन नेहा बहन के उनके ग्रुप में जो मंथन करके आज के विषय पर जो भी दैवी अमृत निकाला है, आज सभा में उपस्थित सबके साथ वह अमृत शेयर करें।
मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगी ओम प्रकाश भाई, जो हमारे ग्रुप में से ही थे और वो आकर के जो भी ग्रुप में डिस्कशन हुआ वो बताएंगे।
हमारे ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ कि कैसे, पहले तो गोल्डन एज को डिफाइन किया गया कि गोल्डन एज क्या होगा, सभी चारों तरफ समृद्धि और सुख का वातावरण होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, चोरी और जारी नहीं होगी, कोई व्यसन नहीं होगा, सभी आनंद से भरपूर होंगे, सभी में एकता होगी, मतभेद का वातावरण नहीं होगा, दूध दही की नदियां बहेंगी, प्रकृति बहुत अच्छी होगी, अनुकूल हो जाएगी, अच्छे संस्कार होंगे, कोई डर का वातावरण नहीं रहेगा, कोई किसी किस्म का पोल्यूशन नहीं होगा। जैसे आज हम देखते हैं हमारे एयर पोल्यूट हो चुका है, वाटर पोल्यूट हो चुका है, अर्थ पोल्यूट हो चुकी है, तो उसको रिवाइटलाइज कर लेंगे और प्रेम की भाषा बोलेंगे, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, सभी सहयोग देंगे, एक ईश्वर को मानेंगे, सच्चाई ईमानदारी होगी चारों तरफ और गरीबी का नामोनिशान नहीं होगा। ये सब एक विजन था जिसको पूरा करने के लिए पहले ये विचार बना कि सब पहले अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाएंगे, व्यसन रहित बनाएंगे और ईमानदारी लाएंगे व्यवहार में, तभी ये पॉसिबल होगा। सभी अपने आप को सभी के साथ मुस्कुरा के बात करेंगे जब भी बात करेंगे और सच्चाई ईमानदारी से बात करेंगे और चारों तरफ सुख लाएंगे। उसके लिए हमें देना होगा, जैसे देवता देते हैं तो हम देने की एक प्रवृत्ति रखेंगे ना कि लेने की। और हमें अपना व्यवहार ऐसा करना होगा जिसमें हम दूसरों को प्रेरणा दे सकें, दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकें, एक आदर्श का वातावरण बनाना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा, वेस्टेज को कम करना होगा, क्योंकि हम आज वेस्ट बहुत करते हैं, खाने का वेस्ट हो रहा है जबकि दूसरी तरफ काफी लोग भूखे सो रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो जब हम अपने आप को खुद को एक उस वातावरण के रहने के लायक बना लेंगे, तभी हमारा जो समाज है, हमारा देश है, वो उन्नति के शिखर पर होगा और सुख समृद्धि होगी चारों तरफ।
शुक्रिया ओम प्रकाश भाई। सचमुच ये जो विषय है ये हम सबके लिए है और उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। जैसे कि अगर आप सभी देखते हैं कि किसी घर में एक मत है, तो जब सबकी मत एक है तो वहां पे होती है एकता। जहां एकता है वहां है आपसी प्रेम, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट। जहां ये सब कुछ है वहां है सुख और शांति। और जहां सुख और शांति हो तो उस घर को आप क्या कहेंगे? ये घर तो जैसे कि स्वर्ग है। सबने कहा ना, सब एग्री करते हैं? तो एक ही स्वर में कहो, ये घर तो जैसे कि स्वर्ग है। और इसी को हर अंतरात्मा मानती है स्वर्ग, चाहे कोई उसे पैराडाइज कहे, कोई बहिष्यत कहे, कोई हेवन कहे। ऐसा हम सबका विजन हो तो सचमुच जितना अच्छा हमारा विचार होगा उतना ही अच्छा संसार होगा। जितना अच्छा हमारा किरदार होगा उतना ही अच्छा संसार होगा। अब मैं अनुरोध करती हूं मेरी स्नेही बहन ज्योति बहन, जो सैट विंग के भोपाल जोन की कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके ग्रुप में जो स्वर्ग की बाहरी खुशबू की सुगंध आप सबने अनुभव की, वह इत्र सभा में उपस्थित सभी को अनुभव कराएं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा और उनकी विशेष नूरे रत्न हमारे बीच उपस्थित आदरणीय देशबेन जी, चंदाबेन, उज्ज्वलाबेन, नेहाबेन, ऋतुबेन और सभा में उपस्थित आप सभी, तो बहुत सुंदर आज जो ग्रुप डिस्कशन हुआ, जिसके तहत जो भी बिंदु निकले, जो भी पॉइंट निकले, कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही हैं। विशेष उसका सार यही है कि हमारा समाज धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और मूल्यनिष्ठ हो, यही चाहते हैं। तो उन्हीं मूल्यों में से सभी ने विशेष जो हमारे ग्रुप ने निकाला कि ईमानदारी होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, आपस में एकता होनी चाहिए, समान भाव होना चाहिए, कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और साथ ही इसको पूरा करने के लिए सभी ने संकल्प लिया कि समाज को अच्छा बनाने के लिए कौन आगे आएगा, हम स्वयं। और इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज भी सुनाई गई, बहुत सारी बातें भी शेयर हुई कि अगर सामने वाला गलत कर रहा है तब भी हम कैसे चेंज हो जाएं। इस प्रकार से कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिए गए। तो उसके लिए यही कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। कुल मिलाकर हमें कहीं ना कहीं लव और लॉ का बैलेंस रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि प्रेम को छोड़ दें, ये नहीं कि हम नियमों को भी छोड़ दें, दोनों को ही साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। और साथ ही जो संकल्प लिए गए कि हम आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की विशेषताओं को देखेंगे, अपने समाज में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में एक दूसरे को हमेशा सहयोग देंगे। तो इस प्रकार से इस ग्रुप ने बहुत सुंदर संकल्प लिया है और पक्का करके गए हैं कि नहीं, जो भी करना है किसे करना है, मुझे ही करना है। और जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम भी करेंगे। और एक एक्टिविटी भी कराई थी साथ में, एक दूसरे से हैंडशेक करवाया था। आप सब भी करेंगे, करेंगे, बोलिए आपस में हैंडशेक करें, बगल में जो भी आपके पार्टनर है बोले गुड आफ्टरनून, अच्छे से थोड़ा गुड आफ्टरनून, आप बहुत अच्छे हैं, बोले एक दूसरे से आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मूल्यनिष्ठ बने, निश्चिंत रहें। धन्यवाद, सभी गले भी लग सकते हैं। तो सभी ने ये प्रैक्टिकल किया, संकल्प भी लिया और प्रैक्टिकल भी किया कि वास्तव में हम अवश्य करेंगे। ओम शांति।
तहे दिल से धन्यवाद ज्योति बहन का। जो सच के सिक्के देता है झूठ के बाजार को, जो नफरत के इस दौर में ओढ़ता है प्यार को, जो स्वार्थ के समंदर में थाम लेता है उपकार को, जो जलते रेगिस्तानों में दिल में लिए है बहारों को, प्रभु अर्पण कर देता है अपनी जीत और हार को, ऐसा मानव ही ला सकता है स्वर्णिम संसार को, स्वर्णिम संसार को। अनुरोध है मेरी स्नेही बहन ऋतु बहन, जो सैट विंग की मेंबर है, कि इस कलयुग के तमस में आपके ग्रुप ने जो सत्योगी रोशनी इकट्ठी की, आइए उसकी स्वर्णिम आभा सभा में उपस्थित सबको आप अनुभव करवाएं।
ओम शांति। तो सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप की एक विशेषता आपको बताना चाहूंगी कि प्रश्न पूरा होने से पहले ही हमारे पास आंसर सबके रेडी होते थे, तो बहुत ही एनर्जेटिक ग्रुप था, बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन भी रहा। वैसे तो बहुत सारी बातें हमारे और भी ग्रुप्स में जो रही वो तो रही, कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक जो पहला प्रश्न है कि उस गोल्डन दुनिया, उस स्वर्णिम दुनिया में क्या क्या अनुभव हम करेंगे, क्या होगी वो दुनिया। उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल बात किसी ने शेयर करी कि वहाँ बिना बोले जो जानवर बोल भी नहीं सकते हैं हम उनसे भी बातें कर पाएंगे, जिसके बारे में जब हमने आगे पूछा कि अच्छा ये कैसे होगा, कैसे बिना बोले भी हम उन बातों को कर पाएंगे, जानवर हो पंछी हो कैसे कर पाएंगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल बात शेयर करी कि जो भावनाएं हैं उसके आधार पर हम कम्युनिकेट करेंगे, राइट। और एक एग्जांपल भी शेयर करा कि जो एक पोमेरियन डॉगी है जो शेयर कर रहे थे, उन्होंने बताया उनके पास एक पेट डॉग है और वो पेट डॉग जो है उसके साथ भी उनका इतना स्नेह का व्यवहार, और वो उनको जब भूख लगती है या जो भी बातें हैं वो समझ पाते हैं किसके आधार पर, भावनाओं के आधार पर, राइट। तो ऐसी ही दुनिया जहाँ पे बातें तो होंगी लेकिन जो बातें नहीं भी कर सकते हम भावनाओं के आधार पर बातें करेंगे, ये बहुत ब्यूटीफुल बात शेयर करी। और बताया कि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो मैंने कहा ये सुनकर तो हमारा जो डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहां पे तो सब थोड़े दुखी हो जाएंगे। बोला नहीं नहीं वो भी होंगे लेकिन वहां डॉक्टर्स बन के नहीं आएंगे। तो क्या बनकर आएंगे? कहा राजा बनकर आएंगे। तो उन्होंने कहा, शेयरिंग हुई ग्रुप में, कि सभी राजा होंगे। तो हमने पूछा अच्छा फिर राज्य किस पर करेंगे, सभी राजा होंगे तो राज्य भी तो करेंगे, तो राज्य किस पर करेंगे? तो कहा वह अपने स्वयं पर राज्य करेंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग, हाँ जी, तो ये बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग हुई। तो हमने कहा अच्छा डॉक्टर्स तो नहीं होंगे और कौन कौन नहीं होंगे, देखे ना कौन से प्रोफेशन तो पहले ही आउट हो जाते हैं। तो बताया कि अच्छा लॉयर भी नहीं होंगे। तो किसी ने कहा लेकिन प्रोफेसर्स होंगे। मैंने कहा अच्छा प्रोफेसर्स क्यों होंगे, वहां क्या पढ़ाएंगे? तो फिर बहुत वंडरफुल डिस्कशन रहा कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, अगर प्रोफेसर्स होंगे तो सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो किसी ने कहा आर्ट होगा, किसी ने कहा नृत्य होगा, किसी ने कहा रास होगी, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स होंगे जो हम वहां पढ़ेंगे। ये हमारा पहला डिस्क्रिप्शन था जो स्वर्णिम दुनिया का रहा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था वैल्यूज और बिहेवियर्स कैसे होंगे। जैसे बाकी ग्रुप्स ने भी शेयर किया, वहां एकता होगी, प्यार होगा, सदा मुस्कुराते रहेंगे। एक विशेष बात जो हम शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि ग्रुप में शेयरिंग हुआ कि ये सब लाने के लिए हमें क्या करना है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो बहुत वंडरफुली किसी ने कहा कि जो योग है, मेडिटेशन है, उसके द्वारा जो है हम अपने को देख सकते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को देख सकते हैं, और उसके द्वारा परमात्मा की शक्तियों को हम अपने में भर सकते हैं, जिससे हम वो वैल्यूज को धारण करके उस नई दुनिया में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। तो ये बहुत वंडरफुल डिस्कशन रहा, और भी बातें जो ग्रुप्स में शेयर करी और भी वो भी डिस्कशन में रहा। इसी के साथ आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।
शुक्रिया ऋतुबेन। ग्रुप नंबर 3 जिनकी कोऑर्डिनेटर शिविका बहन थी, उनके लीडर कौन है जो शेयर करने वाले? आपका नाम दीपक भाई। हाँ आप रेडी रहिए। आप सबसे एक प्रश्न है, जैसे परमात्मा ने यहां पर यह यज्ञ रचा और हम सबसे कहा कि आप सबको देवता बनना है, स्वर्णिम संसार आएगा और आप सभी उस संसार में जाएंगे, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप देवी देवता बन जाओ तो स्वर्णिम संसार आएगा। आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है? हाँ, स्वर्णिम संसार आएगा, हम देवी देवता बनेंगे, यह है पहला ऑप्शन। सेकंड है, हम देवी देवता बनेंगे तो स्वर्णिम संसार आएगा। आपको कौन सा पसंद है? सेकंड।
क्यों फर्स्ट नहीं, सब रेडीमेड है। नहीं वो पॉसिबल है, पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि आत्मा का फंक्शन जो है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, वो हम सब का फंक्शन जब गोल्डन हो जाएगा तब गोल्डन ही जाएगी। और हमारा सब कुछ अगर गोल्डन हो जाए, जो इनर वर्किंग है, तब हम देवता कहलाएंगे। आज जिस तरह से हमारी सोच, समझ और कर्म कार्य कर रही है, फंक्शन कर रही है, क्या हम कह सकते हैं हम देवता हैं? नहीं, चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, समझते कुछ तीसरा हैं, पर करते तो कुछ और ही हैं। इतना फर्क। देवता वह, महान वह, जिसका सब कुछ गोल्डन हो, इच्छाएं भी, थॉट्स भी, वर्ड्स भी, एक्शंस भी, बिहेवियर भी, उसकी वृत्ति, सब कुछ इतनी हार्मनी और कोऑर्डिनेशन हो, उसी को कहते हैं गोल्डन एज। तो आप सब एग्री करते हैं कि आप देवता बनेंगे तो सत्युग आएगा, या आप क्वेश्चन करेंगे कब आएगा सत्युग, कब आएगा स्वर्णिम भारत, दूसरे लाएंगे और हम जाएंगे रेडीमेड, या हम बनेंगे तो हम जाएंगे लाएंगे? हाँ, एक ही स्वर में कहो, हम देवी देवता बनेंगे तो स्वर्णिम भारत आएगा। एग्री? तो खुद के लिए क्लैप करिए। सचमुच जो सुख शांति के गीत गाता है वही सुख शांति पाता है, जिसके मन में वो थॉट्स चलते हो, वही गीत चलता हो। जो अपने को बनाता है वही संसार को सजाता है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूं दीपक भाई से, जो भी आपके सत्युगी रत्नों की माला जो है वो पिरोकर हम सबके सामने इस सभा को आप प्रस्तुत करें। दीपक भाई,
सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रह्म कुमारी संस्था और उनसे जुड़े दीदियों का, दादियों का, जो आज मुझे एक मौका दिया है यहाँ पे आके बात करने का। और दूसरी जिनकी वजह से मैं आज हूँ, मेरी बुआ। मैंने कोर्स कोई नहीं किया था, बट आज पहली बार मुझे मौका मिला है माउंट आबू आके इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। सवाल था, व्हाट डू यू थिंक द गोल्डन एरा वुड बी? हमें इमेजिन करने के लिए कहा गया था कि गोल्डन एरा कैसा होगा। गोल्डन एरा में हमारी इमेजिनेशन ऐसी थी कि वहां पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, सकारात्मकता होगी, इक्वालिटी होगी, स्नेह भाव होगा, सब शांति और सुख शांति में रहेंगे, एक धर्म एक भाव, कोई भी दर्द या परेशानी नहीं होगी, इनसिक्योरिटी डर की भावना नहीं होगी, मरने की भी डर की भावना नहीं होगी। सो ये सारी चीजें थी इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन कि हम क्या इमेजिन करते हैं गोल्डन एरा के बारे में। वैल्यूज जो गोल्डन एरा में लोग के पास होंगे वो है हेल्पलेसनेस, हेल्प करना लोगों की, रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को, सोल कॉन्शियस रहना और अच्छे संस्कार के साथ रहना। अब जब कहा गया कि ये गोल्डन एरा कौन लाएगा इस पृथ्वी पे, तो हम सभी ने कहा कि ये सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब में ये परिवर्तन होना जरूरी है ताकि हम ये गोल्डन एरा को इस धरती पे लाएं। और कंट्रीब्यूशन के बारे में कहा गया कि कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, जो हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम में जो कमियां हैं हमें, हम उनको उन कमियों को दूर करके एक अच्छे परिवर्तन की तरफ चलेंगे। एक आखिरी कंक्लूजन में आपको बताना चाहूंगा कि जो कार्मिक अकाउंट के बारे में है, कार्मिक अकाउंट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि एक चेक पॉइंट के बारे में हमने बात की कि अगर हमारा इंटेंशन कोई भी कर्म में अच्छा है तो उसका जो रिस्पांस या फिर उसका जो भी आउटकम होगा वो अच्छा ही होगा। सो ये कंक्लूजन था। थैंक यू।
थैंक यू दीपक भाई।
युवक ने आकाश की ओर देखा और कहा, बड़ी दूर तक अंधेरा है और प्रकाश कम मेरा है, क्या करूं, अंधकार को कैसे हरूं? तो आवाज आई कि तुम अपनी रोशनी के लिए चलते रहो, तुम रोशनी की राह पर चलते रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आज रोशनी ही सबका अरमान है और तुमसे प्रेरणा पाकर लाखों दीप जल उठेंगे, तुमसे ही प्रेरणा पाकर अनेक आत्माएं रोशनी की राह पर चल उठेंगे। तो इसलिए आज का यह विषय हम सब यहां पर उपस्थित सभी के दीपकों को जगा रहा है और आशा है कि आप सब दीपक जग कर जब अपने अपने कार्यस्थल पर जाएंगे तो और अनेक दीपकों को जगाएंगे। जैसे ही आप एंटर हो सब कहें आप चेंज्ड हैं, आप बहुत अच्छे हो गए हैं, पॉजिटिविटी की महसूसता हो। तो इस तरह से पूरा भारत ही रोशन हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा। हमारे इस ग्रुप डिस्कशन के ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स ने अपने अपने विचारों को शेयर किया ऑन टॉपिक माय रोल इन मेकिंग गोल्डन भारत। अब मैं अनुरोध करती हूं आज के इस सेशन की चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी अवधेश दीदी जी से। आप पिछले 50 वर्षों से अपनी अमूल्य सेवाएं अनेक दीपकों को जगाने में दे रही हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के एमपी जोन और यूप के आप डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के एमपी और यूपी जोन के करीब 200 सेंटर्स और सब सेंटर्स का आप सुचारू रूप से संचालन कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। एक फोर्टनाइटली मैगजीन है ज्ञान वीणा, उसकी आप चीफ एडिटर हैं। सिंगरौली में स्थित तपोवन ट्रेनिंग सेंटर तथा ग्वालियर में स्थित ज्ञान वीणा एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं। देश विदेश की अनेक लाखों आत्माओं को आपने अपनी प्रेरणाओं से आध्यात्मिक बनाया है। आप अनुभवी वक्ता हैं आदरणीय दीदी जी। आपके विचारों में है महानता, चेहरे पर है प्रसन्नता और व्यवहार में है नम्रता। अनुरोध है आदरणीय राजयोगिनी अवधेश दीदी जी से कि आप आज के विषय पर अपने महान विचारों से हम सबको अवगत कराएं।
ओम शांति। अभी आप सभी के जो भी विचार सागर मंथन हुआ उसका मक्खन हम सब खा रहे थे और बहुत ही मक्खन में तो बहुत ताकत होती है, बहुत स्वादिष्ट होता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो मक्खन जैसा कि आज निकला है रोजाना निकले, रोजाना हम खाएं तो हम बहुत शक्तिवान बन जाएंगे, क्योंकि हम सबका जो प्रोजेक्ट है बहुत ही विशेष है, विशाल है और क्रिएटिव है। ये मात्र कल्पना नहीं है, ये 100% होना ही है। होना ही क्यों है, 80 साल से इस प्रोजेक्ट के बारे में यहां निरंतर रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है और आप सभी को जानकर बेहद हर्ष होगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कम से कम 9-10 लाख भाई बहन इस प्रोजेक्ट को लेकर के चल रहे हैं। न सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसके परंतु अब तो इस प्रोजेक्ट को अपने भारत सरकार ने भी उठा लिया है कि हमें स्वर्णिम संसार लाना है, अपने देश को सारे विश्व का जगत गुरु बनाना, उठा लिया है ना। बस इतनी तो आवश्यकता थी, क्योंकि यहां ज्ञान के आधार से जो कार्य हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया थोड़ी कड़ाई हो गई, और जब तक कड़ाई नहीं होती है तब तक पढ़ाई नहीं होती, और जब तक पढ़ाई नहीं होती है कोई लक्ष्य हासिल होता नहीं है। तो आज आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम सुनाते हैं कि जैसा कि हम सबका लक्ष्य है कि हमें अपने भारत को स्वर्णिम बनाना है, निश्चित ही भारत को बनाने के लिए जैसा आप सभी ने सोचा है कि हम सबको ऐसा बनना है, लेकिन आज एक ऐसा पॉजिटिव थॉट तैयार कीजिए। बनना है तो बहुत टाइम लगता है ना, बनने में न जाने कितना समय लगेगा। उसका सरल रास्ता यह है कि आज सभी अपने आप को समझें, मैं देवी हूं और मैं देवता हूं। समझ रहे हैं ना, एक है मुझे देवता बनना है, न जाने कब तक बनेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन आज ही अपने मन में ठान लीजिए कि मैं देवता हूं और मैं देवी हूं। इस सोच के साथ ही आपके अंदर वो डिवाइन मैनर्स ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएंगी। ये सोच आपको बनाने में बहुत सहयोग देगा, क्योंकि संसार का जो भी कारोबार चल रहा है वो सोच पर आधारित है। समझ रहे हैं, और ये 100% राइट बात है कि जब जैसा राजा आता है और उसका जैसे सोच होता है, संसार धीरे धीरे उसी प्रकार का बनता जाता है। चूंकि अब भगवान आ चुके हैं और भगवान को अपनी दुनिया बनानी है, उस दुनिया में सब सुखी होंगे, सब मूल्यनिष्ठ होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, तो किस आधार पर होंगे, हमारे इस सोच के आधार। तो आप सभी को एक बात ये दे रहे हैं और ये गीता में स्पष्ट है, निश्चय बुद्धि विचंती, जहां निश्चय है वहां विजय है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता के लिए कहा जाता है कि दृढ़ता में इतनी शक्ति है उसका स्थान कोई भी और शक्ति ले नहीं सकती, कितनी भी किसी में निपुणता हो लेकिन दृढ़ता का मुकाबला कर नहीं सकती। इसलिए हमारे सोच में ये दृढ़ता आ जानी चाहिए कि मैं देवी और देवता हूं। अभी आप सब जब इस सोच को लाएंगे तो आपके मन में आएगा काहे के देवी देवता, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, अभी तक यही कहते आए मुझ निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं, और आज से आप कहना शुरू कर दें कि हम देवी हैं देवता हैं, दूसरे लोग हमें देख के गाली देंगे, बड़े नशे में बड़ा अपने आप को ऐसा समझते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सही में आप देवी और देवता हैं, और देवी और देवता थे और देवी और देवता बन जाएंगे 100%, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अपने मन से जो भी किसी प्रकार का शक संकोच है उसको आज निकाल दीजिए, क्योंकि इतनी विशाल कॉन्फ्रेंस में आपको सारे भारत से ढूंढ ढूंढ के भगवान ने यहां पहुंचाया है। आप छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कहो भी ऐसा नहीं समझे कि हम तो घूमने के लिए आए, हम तो ऐसे देखने के लिए आए। अरे बहन जी ने ज्यादा फोर्स किया तो हम चले आए, फलाने ने ऐसा किया तो हम आ गए। अरे आ तो गए सही ठिकाने पर, किसी बहाने से आए, किसी के कहने से आए, किसी के समझाने से आए, ये तो सिस्टम ही है। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रही हूं, इसी देश में राम हुए थे, इसी देश में जन्मी सीता, इसी देश में उनका प्यारा जीवन बीता। प्यारे भाइयों बहनों, जो स्वर्णिम संसार था, जिसके लिए कहा जाता है कि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार थे, वसे नगरी जिए दाता धर्म के उपकार थे, ऐसे सृष्टि ड्रामा के दी बेस्ट पार्ट प्ले करने वाले हीरो हीरोइन वो वर्तमान समय है कहां? वो तो जरा बताइए, वो कहां चले गए हैं? जो इस ड्रामा के सृष्टि ड्रामा के दी बेस्ट कलाकार थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता उनके सारे अधिकारी सारे सहयोगी उनका परिवार कहां गया है? कहां बैठे हैं वो? समझ में आ रही है? तो आज इस बात पर 100% स्टाम्प लगा लीजिए, ताली बजाइए। इस निश्चय में कोई शक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्ट प्ले करते 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 एक ही रोल एक ही ड्रेस नहीं होती है। हीरो हीरोइन हजारों ड्रेस चेंज कर लेते हैं एक 3 घंटे के ड्रामा में, तो हम 5000 वर्ष में कितनी ड्रेस चेंज की होंगी, कितने पार्ट प्ले किए होंगे, अंदाज लगाइए। आज हम इस लास्ट स्टेज पर हैं और लास्ट स्टेज पर आके भगवान उन विशेष आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं कि इस दुनिया के मेले में है देव आत्माएं छिपी हुई, करो मुनादी उनको ढूंढो कि कहां कहां है छिपी हुई। तो आप जैसी विशेष आत्माओं का संगठन भगवान ने यहां किया है। इसमें 1% भी कभी किसी के कहने पर शक संशय नहीं होना चाहिए। तो अपने सोच को क्या बनाना है, एकदम पावरफुल पॉजिटिव एंड प्यूरिफाई। जरा भी किसी प्रकार की किसी के कहने पर हमारे मन में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि भगवान कहते कंफ्यूज माना बलफ्यूज, सुना? कंफ्यूज माना बलफ्यूज, छोटा सा वायर लूज और अंधेरा ही अंधेरा, छोटा सा वायर। भले आपकी सेटिंग वायरिंग बहुत अच्छी है, कनेक्शन भी आपका राइट है, लेकिन छोटा सा वायर लूज है तो अंधेरा है ना। इसलिए कहीं पर भी किसी प्रकार की भी ऐसी लापरवाही ना हो, हमें बराबर अपनी सेटिंग और अपनी चेकिंग करनी है। दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि इस सृष्टि ड्रामा में मैं आत्मा दी बेस्ट पार्ट प्ले करने वाली हूं, मुझे दी बेस्ट ही पार्ट प्ले करना है। देवी देवताओं में भी अनेक प्रकार की हैं, सब प्रकार की हैं, ड्रामा में अनेक प्रकार के एक्टर्स होते हैं, कोई वहां भी जोकर का पार्ट प्ले करता है ना, वैरायटी होते हैं ना। लेकिन मेरा पार्ट कैसा है, दी बेस्ट हीरो हीरोइन का है, मुझे दी बेस्ट पार्ट प्ले करना है। जब हम अपने पार्ट को याद रखेंगे, मुझे दी बेस्ट पार्ट प्ले करना है, तो मेरी हर एक्शन में परफेक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, होगी ना। जैसे तैसे करेंगे तो नहीं होगी, दी बेस्ट पार्ट प्ले करेंगे तो हमारे एक्शन में परफेक्शन आएगी। अब ये परफेक्शन तभी आ सकती है जब आपके अंदर में इतना मनोबल हो कि कोई आपको गाली दे रहा है तो आप प्यार से बात करें। कहना आसान बात है और प्रैक्टिकल पार्ट प्ले करना बहुत बड़ी बात है। परफेक्शन एक्शन की यही है कि कोई गाली दे रहा है और मैं कौन हूं? देवता, देवी, मुझे गाली नहीं देना है। अब आप कहेंगे हम सुनते रहें, अगला व्यक्ति बोलता रहे, वो हमें पागल समझेगा, कमजोर समझेगा। हम किसी से कम नहीं है, बता देंगे उसको, उसको भी ठिकाने लगा देंगे, उसको मजा चखा देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, हम बदला लेके दिखाएंगे। ये आ जाती ना भावना, तो फिर हम कैसे देवी और देवता? उस समय पर हमें ये टेंशन रखना होगा कि ये मुझे गाली दे रहा है, अब मुझे क्या करना है। तो दो बातें अपने अंदर में लानी है। पहले तो जो गाली दे रहा है, कभी मैंने इसको गाली अवश्य दी होगी, मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है, पेशेंस रखनी पड़ेगी ना। कभी कुछ किया होगा इसके बारे में मैंने ऐसा वैसा, ठीक है, गाली दे के, बुरा बोल के, उल्टा बोल के ये अपना भी मुझसे बदला ले रहा है। अब मुझे अपना हिसाब किताब क्लियर करना है, कीप साइलेंट, तभी होगा ना। अगर उसने गाली दी और मैंने भी गाली दी तो हिसाब किताब बढ़ता जा रहा है, वो खत्म नहीं होने वाला। उसके पास समझ नहीं है, मेरे पास समझ है, उसको ये नॉलेज नहीं है, मुझे ये नॉलेज है। तो मुझे गाली का रेस्पॉन्स गाली से नहीं देना। दूसरी बात, मेरे अंदर ये आनी चाहिए कि ये जो गाली दे रहा है ये मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि भगवान किसी के द्वारा परीक्षा तो आप ही लेंगे। आप इतनी हाईएस्ट स्टेज पर जा रहे हैं, इतनी ऊंची आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पेपर आपका हो नहीं, और बिना पेपर के कोई आपको पास कर दे तो ऑब्जेक्शन ना क्रिएट हो जाएगा। चाहे उसका टीचर ही एग्जामिनर क्यों ना हो, उसका पिता है, वो टीचर है, वो एग्जामिनर भी है, वो अपने बच्चे को बिना परीक्षा के पास कर दे, किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान सारे संसार में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं, तो भगवान भी दिखाएंगे ना, ये मेरे बच्चे, शांत रहने वाले, तरीके से चलने वाले, मर्यादित जीवन जीने वाले, ये मेरे बच्चे, ये जो हैं ये आसुरी कुल के, ये दैवी कुल के। सिलेक्शन कब होगा? जब परीक्षा होगी। इसलिए कोई भी जब ऐसी बात आए तब यही समझना है ये मेरी परीक्षा है। परीक्षा अर्थात प्रभु इच्छा, भगवान अपने बच्चों की परीक्षा लेता है। इसलिए उस परीक्षा में 100% पास होने के लिए सबके पास तीन पास जरूर होने चाहिए, तीन पासपोर्ट। पहला पास, मुझे हर परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है, जो भी होगा चलेगा, ऐसे नहीं, पास होना है। दूसरा पास, मुझे सदा ही भगवान के पास रहना है, क्योंकि भगवान के पास रहेंगे उनमें इतनी ताकत नहीं आएगी, हमारे में ताकत होगी। जिनके साथी है भगवान तो क्या करेंगे आंधी और तूफान, तो मुझे भगवान के पास रहना है। तीसरा पास मुझे लेना है, कोई ऐसी वैसी बात आए जो मेरे मन को खराब कर जाए उसको बाईपास कर देना है। आई बात गई बात, हैं बाईपास ठहरेगी नहीं ना। अगर उसी बात को आप याद करते रहेंगे तो आपका दिमाग खराब होता रहेगा। तो जिनके पास ये तीन पास होंगे वो पास विद ऑनर हो जाएंगे, और जो पास विद ऑनर हो जाएंगे तो भगवान उनके सर पर ताज रखेगा कि ये है मेरे ताजधारी बच्चे, विशेष बच्चे। हमें कहो भी किसी भी प्रकार से कैसी भी बातें आती हैं, हर क्षण हमको अलर्ट एक्टिव रहना है। कहो भी कहां भी किसी भी रूप से परीक्षा हो सकती है। ऐसे नहीं कि परीक्षा हॉल में बैठाया जाएगा फिर आपको कॉपी दी जाएगी पेन दिया जाएगा अब लिखो बैठ के। आपकी ऑफिस में परीक्षा हो सकती है, मार्केट में हो सकती है, चलते समय हो सकती है, खाना खाते समय हो सकती है, कहीं भी घर में हो सकती है। आपकी पत्नी परीक्षा ले सकती है, आपका बेटा ले सकता है, आपका कोई रिलेशन ले सकता है। तो हर परीक्षा में पास होने के लिए भगवान ने कहा बच्चे हर क्षण मेडिटेशन कंपलसरी है। कई भाई बहन मेडिटेशन का सही अर्थ नहीं समझ पाते। मेडिटेशन को क्या समझती हैं? प्राणायाम करो, कोई विशेष स्थान पर बैठो, कोई घर से अलग चले जाएं, ऑफिस से कहीं दूर चले जाएं, एकांतवास हो, कोई माला जपें, है ना, कोई मंत्र जपें, वो उसका नाम मेडिटेशन नहीं है। आज मेडिटेशन की सही परिभाषा को समझ लें। मेडिटेशन माना अपना सुपर पावर से रिलेशन कनेक्शन। सुपर पावर परमात्मा से आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन। कहीं भी किसी प्रकार की आए कोई भी टेंशन डिप्रेशन इमीडिएट ले लें आप सजेशन। किसी प्रकार का भी नहीं हो आपको टेंशन, इसका नाम है मेडिटेशन। सेकंड में यानी अब बैठेंगे अब जाएंगे फिर भगवान से बात करेंगे, एक सेकंड में पिन ड्रॉप साइलेंट, मैं क्या करूं। मेडिटेशन का अर्थ है सुपर पावर से रिलेशन, है ना, मतलब विद्वत रहे उनसे हमारा कनेक्शन। यानी रिलेशन तो है हमारे पिता है, कनेक्शन हमारा कुछ भी नहीं है, वो इतने बुढ़े हो गए हमें क्या लेना देना। ऐसे भी करते हैं ना आजकल के बच्चे, हम इतने कलेक्टर बन गए, हम इतने डायरेक्टर हैं, हमारा बाप तो बहुत बुढ़ा हो गया। तो रिलेशन है, नो कनेक्शन। जब कनेक्शन नहीं है तो सजेशन कैसे मिलेगा। तो सुपर पावर से रिलेशन और विद्वत हो कनेक्शन। किसी प्रकार की बात आए टेंशन की इमीडिएट लें सजेशन, और हट जाए हर प्रकार से डिप्रेशन बॉदरेशन है ना टेंशन, उसका नाम है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन देखिए शास्त्रों में बहुत अच्छा बताया है, आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि जब भीम जरासिंध को लेकर दो चीज रहे है ना और फेंक रहे हैं, फिर जुड़ रहा है, फिर उसको चीर रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, फिर जुड़ रहा है, तो टेंशन हो गया ना कि जूझ तो रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तब हार के भगवान को व्यक्ति कब याद करता है, हार के परेशान होकर, है ना, जब कहीं कोई चारा नजर नहीं आता है तब उसको भगवान याद आता है, तब ध्यान जाता है उसका भगवान की तरफ। तो भगवान उसको सजेशन क्या देते हैं, भीम ऐसे नहीं ऐसे, सजेशन ही दिया ना, ऐसे नहीं ऐसे। सेकंड में हो गया ना सजेशन से टेंशन खत्म, समस्या का समाधान। तो ऐसे ही परमात्मा से हमारा ऐसा कनेक्शन हो, और जब ऐसा कनेक्शन होगा तो आप रियली कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे अपने जीवन के प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि 50 वर्षों में 50,000 मेरे ऐसे अनुभव होंगे जो कैसे कैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को भगवान ने सॉल्व किया है। जैसे ही बहन जी कह रही थी ना, सब जीव जंतु सबके ऊपर में हमारा प्रकाश से वो हमारी भावना को समझ सकते हैं, ऐसे कुछ बता रही थे ना अभी, कैसे समझ सकते हैं इशारों से, भावना से। मैं भावना का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारी जहाँ जूली रानी रहती है, ज्योति बहन, गोल्डन वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा था, हमारे कमरे के नीचे, चारपाई के नीचे एक नाग और नागिन सो रही थी, इतने बड़े, और हम ऊपर बैठे थे, अपना काम कर रहे थे। खाने का टाइम हुआ, हम चले गए, खाना खाने के बाद आए, हमारी नजर पड़ी, बाप रे बाप, यहाँ तो नाग और नागिन दो पिंड बनाए बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और हमें तो आए भी है यहाँ से, और अब जाना है, अब क्या होगा। इमीडिएट कनेक्शन, प्यारे बाबा को याद किया, और बाबा ने हमें सजेशन दिया कि बच्ची परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इनको बड़े प्यार से बाहर निकाल सकती हो, कोई भाइयों को नहीं बुलाना, भाइयों में ताकत होती है, डंडा मार, पत्थर मार, ये मार, तो भाई लोग थे तो वो भी खाना वाना खा के चले गए थे कमरों में, किसी को नहीं बुलाना, चार पांच बहनें थी। तो इमीडिएट सजेशन दिया कि पत्थर नहीं मारना, कुछ बोलाना नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना, डरना भी नहीं, और सहज भाव से जैसे आपस में बात करते हैं, तुम इनकी भाषा को नहीं समझ सकते, तुम्हारी भाषा को ये समझ सकते हैं। तो मैंने कहा बाबा मैं क्या बोलूं उनको, तो रियली उतने समय में, मां 2 मिनट के अंदर बाबा ने मुझे सारी भाषा शैली भी सिखा दी, बहुत प्यार से बोलना, बहुत मीठे रूप से बोलना, बहुत शांति से बोलना, क्या बोलना, हे नाग देवता, हे नाग देवी, हमें मालूम है कि आप यहाँ पर रेस्ट कर रहे हो, प्लीज मुझे भी यहाँ रेस्ट करना है, और मुझे आपसे डर लग रहा है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जहां से आप आए हैं प्लीज वहां आप चले जाएं, तो हम सब निश्चिंत होके आराम कर सकते हैं। बोला एक बार, रियली उनकी नींद खुल गई, एकदम उन्होंने फन ऊपर कर लिया, जो सो रहे थे ना, एकदम फन ऊपर किया। फिर बाबा ने कहा द्वारा बोलो यही बात, फिर हमने उसी बात को रिपीट किया, तो हमारी बात को सुनकर के वो बाहर निकल आए, बाहर निकल आए, लेकिन डर तो सबको लगता है ना, सुरक्षा का, क्यों पकड़ लेगा, कोई मारेगा, कोई ये करेगा। तो फटाफट हमारे बाजू के कमरे में बाहर में जनरेटर रखा था, उसके अंदर वो घुस गए, अंदर छुप गए। फिर बाबा ने कहा बच्ची तीसरी बार रिपीट करो, मैंने कहा देखो आप यहां पर छिप गए हो, यहां भी तो बहनें आएंगी ना, फिर वही समस्या होगी, आप विश्वास कीजिए ना, आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम आपके साथ साथ चलते हैं, जैसे बाउंड्री लगी हुई है ना, ऐसे हमारे कमरे से बाहर बाउंड्री थी, हम यहां खड़े और वो हमारे कमरों में है, हम विश्वास दिलाते हैं जहां जहां आप जाएंगे हम आपके साथ साथ चलेंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तीसरी बार हमने कहा, रियली दीवाल के सारे दोनों खेत में चले गए, अपनी जगह चले गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल हमारा अनुभव है, एक भाइयों को आवाज तक नहीं लगाई है, प्रैक्टिकल का माना उन्होंने समझा ना। फिर मैं बताती हूँ प्राकृतिक आपदा के ऊपर, प्राकृतिक आपदा तो कितनी बड़ी आपदा होती है, माना मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि मेडिटेशन कितना बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में हर क्षण जहां भी जैसे भी पोजीशन पर हो वैसे कर सकते हो। दूसरी आपदा क्या आई कि भोपाल में हम मीटिंग कर रहे हैं सभी बहनें, करीब 100-150 के करीब बहनें मीटिंग कर रही। नीचे हमारी बहनें खाना पका रही थी, समोसे जलेबी, कढ़ाई इतनी भर ली उन्होंने, आदत होती ना कनस्तर का कनस्तर डालने की, तो जैसे ही मानो उन्होंने समोसे डाले कढ़ाई में, ओवरफ्लो कढ़ाई, और उसमें से तेल गिरा नीचे, आग लगी, तेल में लगी, गैस के पाइप में लगी, भर 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 तेल भरी कढ़ाई में आग लगी तो क्या होगा, फिर पाइप गैस के पाइप में आग लगी तो क्या होगा, महाविनाश होगा कि नहीं। ऐसी पोजीशन में जहां म्यूजियम बन रहा है, या लकड़ी है, या प्लाई है, रस्सी है, सब चीजें पड़ी हुई है, पूरे घर में आग लग जाएगी। अब ऐसे आग के टाइम पर नेशनल फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे ना, और कितना टाइम लगेगा आने में जाने में, क्या करते, इमीजिएट हमने बाबा से सजेशन लिया, बाबा क्या करें। तो बाबा ने कहा, देखो मैं बता रही, पावरफुल ये मेथड है, भगवान सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसकी शक्ति को यूज तो हमें करना है ना, हमें करना है ना। तो भगवान ने हमें सजेशन क्या दिया, बच्ची जाओ फौरन और एक मिनट के अंदर में उस आग को शांत करो। फायर ब्रिगेड पहुंचेगी एक घंटे में, स्वाह हो जाएगा। एक मिनट, उसी विश्वास के साथ हम गए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं शिव शक्ति आदेश दे रही हूं, ये गैस एक मिनट के अंदर शांत हो जानी चाहिए, ये आग बिल्कुल शांत हो जानी चाहिए। रियल बता रही हूं, एक मिनट नहीं पूरी हुई होगी, भप भप कढ़ाई बंद, गैस बंद और एकदम शांत। जब फायर ब्रिगेड वाले आए आधा एक घंटे के बाद, कहां आग लग गई, कहां लग गई, मैंने कहा सब ठंडी हो गई। कैसे ठंडी हो गई, सिलेंडर उठाया, गैस है इसमें, तो कढ़ाई में तेल भी है ना। तो मैंने कहा भगवान ये कैसे बंद कर, मैंने कहा भाई साहब हो गई, अब वहां पूरा कौन मेडिटेशन की विधि बताया मना हो गया। कहने का भाव ये है, चॉइस मेडिटेशन को आप प्रॉब्लम पे लीजिए, बीमारी पे लीजिए, संस्कार पे लीजिए, आप यूज कीजिए। जैसे आपकी आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही है, छोटी सी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई नहीं देती है, वंडरफुल है ना, निकल गई तो शरीर बेकार है, तो कितना वंडर है। उस आत्मा की शक्ति को जानिए और सही रूप से यूज कीजिए। निश्चित रूप से आप दृढ़ संकल्प लीजिए, मैं आत्मा मास्टर गोल्डन वर्ड की हीरो एक्टर हूं, मुझे अपने जीवन को गोल्डन बनाना है, परिवार को बनाना है, समाज को बनाना है और सारे देश को बनाना है, बन जाएगा। ओम शांति।
अंतर मन से धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी अवधेश दीदी जी का। स्वर्णिम संसार की बात कर रहे हैं तो अंत में आपको एक निशानी बताना चाहेंगे स्वर्णिम संसार की। जब सत्ययुग था, जब गोल्डन एज, उस समय जब हम सब एक दूसरे को मिलते थे, देखते थे, तो ये फीलिंग थी ये मेरे हैं। क्या फीलिंग है? मेरे हैं, परिवार है, मेरे हैं, वो अपनेपन की फीलिंग और मेरे हैं की फीलिंग। धीरे 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 त्रेता युग आया तो ये फीलिंग रही ये मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार है, लेकिन अगर इनमें ये बात होती तो ये ज्यादा अच्छे होते। क्या फीलिंग आई? ये बात होती, ये गुण होता तो ज्यादा अच्छे होते, या ये फीलिंग आई कि ये इनमें नहीं होता तो ये ज्यादा अच्छे होते। धीरे 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 त्रेता युग बीता और आया द्वापर युग। अब हम देखने लगे सबको किस फीलिंग से, ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये कमजोरी है, और हमारी दृष्टि सिर्फ दूसरों की वीकनेसेस गलत उतनी परसेंटेज उसको देखने लगे। और जब कलयुग आया तो हम सब अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार दूसरों की वीकनेसेस को ठहराने लगे। तो स्वर्णिम संसार कब आएगा? कब आएगा? जब परिवार की फीलिंग हो। इसलिए
आज के इस सेशन के अंत में हम सब से एक वायदा चाहेंगे। आप सबको रिपीट करना है, स्वर्णिम संसार बनाने के लिए विश्व को परिवार मानेंगे। स्वर्णिम संसार लाने के लिए हम विश्व को परिवार मानेंगे। सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को जानेंगे। सबके गुणों को पहचानेंगे। आध्यात्मिकता की राह पर चलने की ठानेंगे। थैंक यू, टेक योर सीट्स। अंत में हम सभी यही याद रखें, स्वर्ग सी हो धरती हमारी, सुखी हर इंसान, मेरे भारत की सदा हो सबसे ऊंची शान। सब एक ही स्वर में कहेंगे, मेरे भारत की सदा हो सबसे ऊंची शान। थैंक यू, ओम शांति।